अक्षय ने जैसे ही वार्ड में कदम रखा, सबकी निगाहें उसकी ओर घूम गईं। बेड पर बैठी आहाना ने भी कातर निगाहों से उसे देखा। उसका घबराहट भरा चेहरा जाहिर कर रहा था कि वो डर रही है। उसकी लापरवाही के कारण जो हुआ, अक्षय उस पर नाराज जरूर होगा। जहां आहाना की आंखों में डर झलक रहा था, वहीं बाकी सब आंखों में एक उम्मीद लिए उसे देख रहे थे। अक्षय उनके सवालों को बिना कहे ही समझ गया था। उसने हल्की मुस्कान लबों पर सजाते हुए अपनी पलकें झपका दीं। इसके साथ ही सबके चिंतित चेहरों पर सुकून और खुशी के भाव उभर आए। अनु, तू अक्षय जी से बात कर, हम सब बाहर हैं। दृशांत ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा और उन्हें एकांत देते हुए सबके साथ वार्ड से बाहर निकल गया। हालांकि अभी उन्हें भी अपनी खुशी और भावनाओं को व्यक्त करना था, पर इस वक्त उन दोनों का बात करना सबसे ज्यादा जरूरी था। सबको जाते देखकर आहाना और ज्यादा घबरा गई थी, पर चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकी और सर झुकाए उदास सी बैठ गई। धीमे कदमों के साथ अक्षय उसके पास पहुंचा। आहाना उसकी आहट महसूस कर रही थी, पर निगाहें उठाकर उसे नजरें मिलाने और उसकी नाराजगी का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकी। कुछ पल उनके दरमियान अजीब सा सन्नाटा पसरा रहा। अक्षय डॉक्टर की बातों में उलझा था, वहीं आहाना अक्षय की डांट का सोचकर सहमी हुई सी बैठी हुई थी। कुछ देर बाद अक्षय ने अपनी खामोशी तोड़ी और कुछ कहने को लबों को खोला ही था कि आहाना की धीमी सी घबराहट भरी आवाज उसके कानों से टकराई और वो बोलते बोलते ठहर गया। सॉरी, आप नाराज हैं ना हमसे? आप हमेशा कहते हैं कि हम अपना ख्याल रखें, पर हम आपकी कोई बात नहीं सुनते। हमेशा अपनी लापरवाहियों के कारण खुद को चोट पहुंचाकर आपको परेशान कर देते हैं, और इस बार तो हमने सारी हदें ही पार कर दी। इसके बाद आहाना पल भर के लिए ठहरी और मायूसी भरे स्वर में बोली, सॉरी, पर हमने जानकर नहीं किया था कुछ भी। हमें भी नहीं पता कि कैसे अचानक हमारी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और हम अपने होश खो बैठे। बस इस बार माफ कर दीजिए, नाराज मत होइए हमसे। आगे से हम पक्का अपना पूरा ख्याल रखेंगे, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। आहाना किसी गुनहगार जैसे सर झुकाए बैठी थी। अक्षय उसके पास रखे स्टूल पर बैठ गया और उसके चेहरे पर नजरें टिकाते हुए गंभीर स्वर में बोला, वो तो आपको रखना ही होगा, क्योंकि इस बार मैं आपकी छोटी से छोटी लापरवाही अफोर्ड नहीं कर सकता, और ना ही आपको अब दोबारा खुद को तकलीफ पहुंचाने, अपनी हेल्थ को अनदेखा करने की इजाजत देने वाला हूँ। आहाना के कानों में उसकी कठोर आवाज पड़ी तो उसने घबराहट में अपनी जीभ को दांतों तले दबा लिया और सहमी निगाहें अक्षय के गंभीर चेहरे पर आ ठहर गईं। बहुत ज्यादा नाराज हैं क्या? आपने नाराजगी वाला काम किया है या नहीं? सवाल के जवाब में अक्षय ने उल्टा उसी से सवाल कर लिया और भौहें से कोर उसे घूरने लगा। अक्षय के सवाल पर आहाना ने निचले होंठ को बाहर निकालते हुए मासूम सी सूरत बना ली। सर पर टांके लगे हैं आपके, इतना खून निकल गया सिर्फ आपकी लापरवाही के कारण। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो क्या जरूरत थी इतना काम करने की? मेरी बात क्यों नहीं मानती हैं आप? अक्षय ने नाराजगी से सवाल किया और जवाब में आहाना की ओर से खामोशी आई। अब उसे क्या बताती कि रूपाली जी की बात सुनकर वो इतनी डिस्टर्ब हो गई थी कि कब क्या हुआ उसे कुछ समझ ही नहीं आया। पल भर की खामोशी के बाद अक्षय ने आहाना की हथेलियों को अपनी हथेलियों में थामते हुए ठहरी हुई गंभीर आवाज में उसे पुकारा, अनु, पहले जो भी हुआ वो बीत गया, पर अब हम आपकी हेल्थ को लेकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। अब आपको सीरियस होना होगा, अपना ख्याल रखना होगा, क्योंकि आपकी जरा सी लापरवाही सब कुछ बर्बाद कर सकती है। मैं तो रहूंगा ही आपके साथ आपका ध्यान रखने के लिए, पर आपको मेरी सब बात भी माननी होगी और खुद से भी अपना ख्याल रखना होगा। उसकी बातें और बोलने के अंदाज में कुछ तो अलग था जिसने आहाना को उलझन में डाल लिया था। जरूरत से कहीं ज्यादा गंभीर लग रहा था वो, ऐसा आहाना को लग रहा था। उसने पलकें उठाई और असमंजस भरी निगाहों से उसे देखने लगी। अक्षय जी, क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? हमारे सर पर चोट लगी इसलिए आप इतने घबरा गए, या इन सब बातों के पीछे कोई और बड़ी वजह है? वजह तो है, और बहुत बड़ी वजह है। अक्षय ने फिर उसे पहेलियां बुझाई और आहाना उसकी जलेबी जैसी घुमावदार बातों में उलझ गई। कैसी वजह, हमें भी बताइए, आप इतने ज्यादा गंभीर और परेशान क्यों लग रहे हैं? परेशान हूँ और गंभीर भी, क्योंकि आज इस हादसे में हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था जो मैं किसी कीमत पर होने नहीं दे सकता। एक बार उसने साफ साफ आहाना को कुछ भी नहीं बताया और उसकी इन उलझी हुई बातों को सुनकर इस बार आहाना चिर उठी। सीधे से कहिए ना, क्या बात है? हमें अपनी गोलमटोल बातों में उलझा क्यों रहे हैं? अक्षय पल भर को उसके चेहरे को देखते हुए सोचता रहा कि कैसे ये बात आहाना को बताए। फिर उसने अपनी एक हथेली को उसके पेट पर रख दिया। आहाना की आंखों की पुतलियां फैल गईं और बड़ी बड़ी आंखों से अक्षय को देखते हुए समझने की कोशिश करने लगी कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है जो इस वक्त आपके अंदर सांस ले रहा है, और हमारी जरा सी लापरवाही उसकी जान खतरे में डाल सकती है। आहाना के चेहरे के भाव अब कुछ बदलने लगे। शायद अक्षय की बातों का मतलब अब उसे कुछ कुछ समझ आने लगा था, पर उसके लिए इस बात पर विश्वास करना आसान नहीं था। उसकी आंखों में अविश्वास और शंका के भाव देखते हुए अक्षय ने आगे कहना शुरू किया, आप सही थी, इस बार आपकी उम्मीद झूठी नहीं थी।
आपको जो महसूस हुआ वो कोई भ्रम नहीं था, बल्कि हकीकत थी जिस पर मैं विश्वास नहीं कर सका। आपको जो परेशानियां हो रही थी उसकी वजह आपकी लापरवाही या खराब तबीयत नहीं थी, वो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स थे। अब सच में प्रेग्नेंट है और आज के हादसे के बाद भी हमारा बच्चा आपके अंदर सुरक्षित है। पर हर बार भगवान हम पर मेहरबान हो ये जरूरी नहीं, इसलिए परेशान हूँ मैं कि कहीं ऐसा हादसा फिर से न हो जाए और इस बार भी हमारी खुशियाँ रूठ कर हमसे दूर न चली जाए। अक्षय बोल रहा था, पर अहाना को अब भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। इतनी बार उम्मीदों के टूटने का दर्द सह चुकी थी कि अब दिल इस बात पर भरोसा करने से कतरा रहा था। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? दो दिन पहले टेस्ट किया था हमने, उसमें रिजल्ट नेगेटिव आया था, फिर हम प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकती आप प्रेग्नेंट? टेस्ट किट एक उपकरण है और उससे गलती हो सकती है। हर बार उसके रिजल्ट सही हों ये जरूरी नहीं। मैं अभी आपकी ब्लड रिपोर्ट देख कर आ रहा हूँ। यकीन कीजिए मेरा, मैं आपको कोई झूठी उम्मीद कभी नहीं दूंगा। आप प्रेग्नेंट हैं अनु, हमारा इंतजार अब खत्म होने वाला है। आपकी ममता और हमारी तपस्या का फल मिलने वाला है हमें। हमारी खोई खुशियों को हमारे बच्चे के रूप में भगवान ने हमें वापस लौटा दिया है। मैंने कहा था ना आपसे कि आप में कोई कमी नहीं है, जब सही वक्त आएगा तो भगवान हमारी जिंदगी की इस कमी को भी भर देंगे। बस हमें धैर्य के साथ उस सही वक्त का इंतजार करना है और भगवान पर विश्वास रखना है कि वो इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं करेंगे हमारे साथ, हमें संतान के सुख से वंचित नहीं रखेंगे। देखिए, उन्होंने हमारे इंतजार को खत्म कर दिया, हमें हमारा बच्चा लौटा दिया। अब बस हमें इस बार पहले से ज्यादा अलर्ट रहना है और मिलकर आपका और अपने बच्चे का ख्याल रखना है। अहाना के चेहरे को अपनी हथेलियों में भरे अक्षय उसे इस हकीकत पर विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था। उसके शब्दों में उसकी भावनाएं झलक रही थीं, जो अहाना के दिल तक पहुंच रही थीं। उसकी आंखों में झांकती अहाना की आंखों में धीरे धीरे नमी उतर आई। इतने लंबे इंतजार के बाद जब वो नाउमीदी से घिरने लगी थी, तब अचानक ही ये खुशी उनकी जिंदगी में आई, जिस पर विश्वास कर पाना उन दोनों के लिए मुश्किल था। हम सच में माँ बनने वाले हैं, हमारी सूनी गोद भरने वाली है। अहाना के थरथराते लबों से भावनाओं से सराबोर रुंधी आवाज बाहर आई और उसके सवाल के जवाब में अक्षय ने सौम्य सी मुस्कान लबों पर सजाते हुए सहमति में सर हिला दिया।
अहाना ने नजरें झुकाकर अपने पेट को देखा, अपनी कांपती हथेली से अपने अंदर पल रहे बच्चे को महसूस करने की कोशिश करने लगी। आज खुशी इतनी थी कि उससे संभाले नहीं संभल रही थी। उसके लब मुस्कुराना चाहते थे, पर कमबख्त आंखें बरस पड़ी। बहुत कुछ कहना चाहती थी, अपनी खुशी को शब्दों में जाहिर करना चाहती थी, पर गला रुंध गया था। अक्षय उसकी भावनाओं को बखूबी समझ रहा था। उसने उसके आंसुओं को पोंछते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया और अपनी बाहों के घेरे में कसते हुए अपनी आंखें मूंद लीं। ये लम्हा, ये एहसास बहुत खास था उनके लिए। इस वक्त उनके जज्बातों को, उनकी खुशी को जाहिर करने के लिए किसी शब्द की जरूरत नहीं थी और ना ही ऐसा कोई शब्द बना था जो उनके मन के भावों को व्यक्त कर सके। दोनों के लब खामोश थे, पर सीने में मौजूद दिल की धड़कनें खामोशी से एक दूसरे से अपनी खुशियां साझा कर रही थीं। दरवाजे पर दस्तक हुई, तब कहीं जाकर दोनों एक दूसरे से अलग हुए। एक बार फिर अक्षय ने अहाना के चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया और प्यार भरी निगाहों से उसे निहारते हुए मुस्कुरा दिया। थैंक यू, इतना सब सहकर भी उम्मीद की उस नाजुक सी डोर को थामे रखने के लिए और एक बार फिर मुझे इस खुशी को महसूस करने का मौका देने के लिए। आई प्रॉमिस, इस बार मैं आपके और अपने बच्चे का ख्याल रखने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। बस आप हमेशा खुश रहिएगा। इन आंसुओं और अतीत के दर्द को भुलाकर हमारी जिंदगी में आने वाली खुशियों को महसूस कीजिएगा। यहाँ अक्षय ने अपनी बात पूरी की और वार्ड का दरवाजा खुल गया। अक्षय झट से उसके माथे को चूमते हुए पीछे हट गया और उसकी हड़बड़ी देखकर अहाना के सिमटे लब मुस्कुरा उठे। अक्षय जी, अगर आपकी अनु से बातें हो गई हैं तो अब जरा हम भी उससे कुछ बात कर लें। पल्लवी ने शरारत से आंखें मटकाते हुए जानकर अक्षय को छेड़ा और अक्षय ने झेपते हुए झट से हामी भर दी। पल्लवी समेत बाकी सब लोग अक्षय और अहाना को मुस्कुराते देखकर प्रसन्न हो गए। कितने वक्त बाद ये सच्ची मुस्कान उनके लबों पर उभरी थी। मुबारक हो जाने मन, आखिरकार तेरा इंतजार खत्म हुआ और अब जल्दी ही तू मुझे मासी और मामी कहलाने का मौका देने वाली है। सबसे पहले पल्लवी अहाना के गले लगी थी और साथ ही अपनी खुशी भी जाहिर कर गई थी। उसकी बात सुनकर अहाना की पलकें झुक गई, हया की लाली गालों पर बिखर गई और लबों पर शर्मीली सी मुस्कान सज गई। पल्लवी के बाद द्रीशांत ने आगे बढ़कर अपनी बहन को अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहना, बहुत इंतजार किया ना तूने इस खुशी का। अब ख्याल रखना अपना, आज जैसी लापरवाही दोबारा नहीं होनी चाहिए, बस खुश रहना। बड़ा भाई था वो उसका और हमेशा जैसे बहुत ही प्यार से उसे समझा रहा था।
आहाना उसकी चिंता समझ रही थी। उसने सहमति में सर हिला दिया। जयंती जी ने उसे गले से लगाकर ढेरों आशीर्वाद दिए। जयेश जी के सीने से लगने पर आहाना की आंखें एक बार फिर भीग गई थीं। सबने दोनों को मुबारकबाद दी, अपनी खुशी जाहिर की। उसके बाद आहाना ने निगाहें एक तरफ खड़े अक्षय की ओर घुमाते हुए सवाल किया, हम घर कब जाएंगे? अभी डॉक्टर आएंगी, आपके कुछ टेस्ट होंगे, उसके बाद आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा, अक्षय ने सहजता से जवाब दिया। वहीं अभी उसे कुछ देर और हॉस्पिटल में रहना होगा, ये सोचकर ही आहाना का मुंह बन गया था और बाकी सब उसे देखकर मुस्कुरा उठे थे।